फल प्राप्त करने के लिए। तो नो कर्म, नो कर्म यानी क्या हुआ, परिभाषा याद आ गई। कर्म फल में सहायक पदार्थ को नो कर्म कहते हैं, कर्म फल को भोगने में जो सहायक होते हैं उनको नो कर्म कहते हैं। फिर दूसरा जो कर्म है उसका नाम है द्रव्य कर्म। ये द्रव्य कर्म जो होता है, ये द्रव्य कर्म, इसके मुख्य 8 भेद हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि। तो जिसमें से 4 घातिया कर्म है और 4 अघातिया कर्म है, इनको द्रव्य कर्म कहते हैं। और भाव कर्म जो है, कर्मों के उदय में जीव के भीतर जो अज्ञान भाव है, रागादि भाव है, विकारी भाव है, इनको भाव कर्म कहते हैं। आ गया ना समझ में? कर्म के उदय से जीव के अंदर भाव होते हैं। जैसे क्रोध का उदय आया और सामने कोई ऐसा नौकर्म भी मिल गया क्रोध के लिए, क्योंकि नौकर्म मिले बिना कर्म का फल प्रकट नहीं हो सकता, वो अव्यक्त रहेगा, व्यक्त नहीं होगा, लेकिन नौकर्म के संयोग में कर्म का फल प्रकट होगा। जैसे मान लो अपने क्रोध कषाय का उदय चल रहा है और अपन भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो फिर ऐसा कोई नौकर्म नहीं है अपने सामने, सहायक नहीं है उस क्रोध का फल भोगने में, तो फिर वो क्रोध का उदय आता है, चला जाता है और अव्यक्त रहता, उसका फल प्रकट नहीं होता। और क्रोध के उदय में अगर कोई सामने से आकर के आप बिना देखे आपसे टकरा जाए तो वो नौकर्म बन गया, और नौकर्म बनने पर फिर आपका क्रोध प्रकट हो जाता है, तो वो फल सामने आ गया। तो ये जो भाव आपके अंदर हुआ है क्रोध का, वो भाव कर्म है। नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ऐसे 3 प्रकार के, इनसे रहित होते हैं सिद्ध परमेष्ठी। लेकिन अरहंत परमेष्ठी, उनके पास शरीर रूप नौकर्म होता है और अघाती कर्म के परमाणु रूप द्रव्य कर्म भी होते हैं, लेकिन भाव कर्म नहीं होते, क्योंकि अरहंत भगवान वीतराग है, उन्होंने सब विकारों को जीत लिया है, इसलिए उनके भावों में कोई प्रकार का कर्म नहीं होता। तो ऐसे सिद्ध भगवान महंता, महान होते हैं, माने तीर्थंकर पद से भी महान पद है सिद्ध भगवान का अंतिम पद, उसी का नाम है अक्षय पद, उसी का नाम है अनर्घ्य पद, सबसे बड़ा पद है महंता। ते हैं निकल, वे निकल है, निकल यानी संस्कृत में उसको निष्कल बोलते हैं, कलात् निष्क्रांत है निष्कल, तो वो कल यानी शरीर से रहित है। और अमल है, अमल यानी मल रहित, विकार रहित है, सब प्रकार के कर्म रूपी मल से भी रहित है। और अमल का अर्थ निर्मल भी होता है, एकदम शुद्ध। जीव की शुद्धतम पर्याय कौन सी है? सिद्ध अवस्था, सिद्ध पर्याय। तो ऐसे वे परमात्म, परमात्मा है। भोगें शर्म अनंता, अनंत शर्म को भोगते हैं। शर्म का अर्थ किसी को याद है? कहां आया था अशर्म? ना बताओ जरा, वो पद कौन सा था? जे क्रिया तिने जा अनहु कुधर्म, तिन सर्धे जीव लहे अशर्म। और यहां सिद्ध भगवान के लिए कह रहे हैं भोगे शर्म अनंता। शर्म का शर्म सात सुखानी च, शर्म का अर्थ होता है सुख। पूजा में भी आता है काम से, कौन से बोलो? पंचमेरु में आता है ठीक है, शर्मदा, हाँ ठीक है, शर्मदा यानी सुख को प्रदान करने वाले। तो भोगे शर्म अनंता वो सिद्ध भगवान। अब देखो, कोई किसी के मन में शंका उत्पन्न हो जाए कि अरंत भगवान के पास तो शरीर था, लेकिन सिद्ध भगवान के पास तो कुछ भी नहीं है, क्या करते होंगे बिना शरीर के, अकेली आत्मा ऐसे ऐसे क्या करती होगी, ऐसा होता है किसी के मन में? तो फिर उसका समाधान है कि अनंत सुख को भोगते हैं वो। देखो वास्तव में वही अपना स्वरूप है। अभी तो क्या है कि अपन ने कुछ दूसरा ही वेश धारण करके रखा है, ये अपना असली रूप थोड़ी है। ये जीव का असली रूप जो है वो सिद्ध पर्याय में प्रकट होता है। और अपन क्या है, अभी अपन ये सब ड्रेसेस पहने हुए हैं, ये सब अपन साथ में अपने स्वरूप में ये चीजें नहीं है जो अभी अपने पास है। ये शरीर है, वस्त्र आदि है, ये सब अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो सिद्ध भगवान जो है अपनी शुद्ध अवस्था में रहते हैं और अनंत सुख को भोगते हैं। अब इसके आगे उपदेश दे रहे हैं, बहिरात्मता हे जानी, बहिरात्म अवस्था को हे जान करके तजी छोड़ो और उसका त्याग करके अंतर आज आत्म हो जाए, अंतरात्मा बन जाइए, हो जाइए और परमात्म को ध्याय निरंतर। परमात्म को निरंतर ध्याना माने उनका निरंतर ध्यान लगाकर, जो जो परमात्मा को नित्य ध्याता है तो नित आनंद पूजे, नित्य आनंद को पूजे यानी प्राप्त होता है। अथवा नहीं, ध्याय का अर्थ वही लगाएगा, परमात्मा का ध्यान करके, निरंतर ध्यान करके नित आनंद, जो शाश्वत आनंद है, मोक्ष का सुख, उसको प्राप्त करते हैं। अब अजीव की बात आती है, जीव की चर्चा तो हो गई ना। देखो जीव के तीन भेद थे, कौन से, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब बहिरात्मा तो ठीक है, अब इसकी चर्चा अपने रैणसार ग्रंथ में गुणस्थानों की अपेक्षा से बताइए। पहले तीन गुणस्थानों में बहिरात्मा, फिर चौथे से बारहवें गुणस्थान में अंतरात्मा, और अरहंत और सिद्ध भगवान परमात्मा। तो अरहंत भगवान कौन से गुणस्थान के हो गए? नहीं, अभी हमने अंतरात्मा के कौन से गुणस्थान बताए थे, बहिरात्मा के कौन से गुणस्थान, फिर से याद करो, बोलो। सब लोग चुप, बाकी लोग चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? मौन धारण किया क्या? स्वाध्याय के समय हम मौन रखेंगे, ऐसा है क्या? पहले तीन गुणस्थान में बहिरात्मा है, फिर अंतरात्मा कौन से गुणस्थानों में, चार से बारह, तो फिर परमात्मा कौन से गुणस्थान में हुए, तेरहवें और पंद्रहवें, पंद्रह होते ही नहीं गुणस्थान, चौदह ही गुणस्थान होते हैं। तो फिर उसके आगे सिद्ध पद होता है, चौदहवें गुणस्थान से आगे निकल जाओ तो सिद्ध पद है, तो वो भी परमात्मा है। तो ठीक हो गया, पूरा व्यवस्थित हो गया। तो चौथे गुणस्थान में जगन अंतरात्मा, फिर पांचवे छठे आदि गुणस्थानों में मध्यम, संतोत्ति मध्यम अंतर। एक गाथा आती है कि संतोत्ति उपशांत कषाय तक के मध्यम अंतरात्मा होते हैं, और क्षीण उत्तम, क्षीण कषाय गुणस्थान वाले, बारहवें गुणस्थान वाले उत्तम अंतरात्मा होते हैं, और उसके ऊपर जो परमात्मा है तेरहवें गुणस्थान वाले, वो तो परमात्मा ही है। तेरहवें, चौदहवें और सिद्ध भगवान, ये परमात्मा है। अब इसमें थोड़ा सा मतभेद इस प्रकार भी आता है कि जो ध्यान में स्थित साधु हैं उनको भी उत्तम अंतरात्मा कह दिया है उपचार से। साक्षात अंतरात्मा जो है उत्तम अंतरात्मा, तो बारहवें गुणस्थान वाले खीण उत्तम, ये तो मूल प्राकृत में गाथा ही है। संतोत्ति मध्यम, अब इसके आगे आप क्या कहोगे? इसमें तो क्लियर लिखा है कि संतोत्ति माने उपशांत कषाय तक के मध्यम, मध्यम का अर्थ मध्यम अंतरात्मा हो गए। तो इस तरह ये अंतरात्मा के तीन भेद होते हैं, जगन्य, मध्यम और उत्तम। और फिर अपन विचार भी करो कि जो जगन्य है और उत्तम है उसके बीच वाले को ही तो मध्यम कहते हैं। जगन्य चौथे गुणस्थान वाले, उत्तम बारहवें गुणस्थान वाले, तो फिर मध्यम कौन से गुणस्थान वाले होंगे? पांच से ग्यारह होंगे। बिल्कुल सीधी बात है, जब चौथा जगन्य है और बारवा उत्तम है तो मध्यम क्या हुआ? अब यहां पर साढ़े चार और साढ़े पांच, ये व्यवस्था नहीं है गुणस्थानों में, पांचवें से ग्यारहवें गुणस्थान तक मध्यम हो गया। फिर परमात्मा के दो भेद आपको याद हो ही गए, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा को अरहंत कहते हैं, निकल परमात्मा को सिद्ध कहते हैं। अब सिद्ध परमेष्ठी वहां पर क्या करते होंगे, इसका समाधान है कि वहां पर उनको अनंत सुख होता है, इसलिए उनको और कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव जो कुछ भी करता है सुख प्राप्ति के लिए करता है। आप भी यहां पर क्यों आए, क्यों आए यहां पर छेड़ाला सुनने? अच्छा, आप अभी वापस घर क्यों जाओगे इसके बाद? जो कुछ भी किया जाता है वो सब सुख पाने के लिए किया जाता है। यहां तक के कि कोई अज्ञानी जीव मूर्खतावश आत्महत्या भी करता है तो यही सोचकर करता है कि इससे मुझे सुख मिल जाएगा, यही सोचकर करता है कि नहीं? अभी जो दुख हो रहा है मुझे, इससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा, यही सोचकर आत्महत्या तक के करता है। जबकि वो व्यवस्था वैसी नहीं है, उसकी नादानी, उसकी नासमझी है, तो वैसा करता है। तो हर प्रयास सुख के लिए किया जाता है। तो सिद्ध भगवान को जब सारा सुख मिल गया है तो अब उनको करने धरने की क्या आवश्यकता है? इसलिए एक शब्द है कृत कृत्य। सिद्ध भगवान जो होते हैं कृत कृत्य होते हैं। कृत कृत्य माने कर चुके हैं करने योग्य कार्य, जो यानी जिन्होंने करने योग्य सारे काम पूरे कर लिए, अब कोई काम बचा नहीं है, वो सिद्ध भगवान है। तो इसलिए कृतकृत्य को कोई आकुलता नहीं होती। और अपन अपनी बुद्धि से सोचो कि भाई वहां पर कुछ नहीं करते हैं तो फिर कैसे उनका टाइम पास होता होगा, तो ये टाइम वाइम पास करने की बात वहां पर नहीं है। उन्होंने टाइम का पूरा सदुपयोग करके वो चीज प्राप्त कर ली है कि अब बस अनंत काल तक के वो आनंद में मग्न रहेंगे। आगे चल करके बतलाएंगे छठी ढाल के अंत में। अब अजीव की बारी है। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेद ताके हैं, पुद्गल पंच वरण रस पन गन, देखो अगर आप नकल करते तो अभी सही उच्चारण हो जाता, लेकिन आप घबरा गए बिल्कुल कि अब कैसे बोलना। कैसा करेंगे एक मिनट हम फिर से बताते। रसपन है क्या? रस गंध है ना, रस के बाद पन नहीं लिखा, पन लिखा हुआ है। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि क्या है कि पन लिखोगे तो फिर छंद भंग होता है, पढ़ने में नहीं आता, मात्राएं बढ़ जाती है। और जिनवाणी में जहां पर पन मेरु लिखा है, आप पढ़ते हैं ना पंच मेरु नंदीश्वर जिनाले, तो ये जो पंच पढ़ते हैं आप, आपकी पुस्तकों में पंच लिखा हुआ है क्या? नहीं, इसमें तो ठीक है, हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। जो पूजा में पंच मेरु पूजा है ना, उसमें क्या पढ़ते हैं? वहां पन मेरु है, वहां पर पंच मेरु नहीं है, पन मेरु है वहां। और जितने लोग पंच मेरु पढ़ते हैं समझ लेना कि उनकी किताब में गलत छपा है, क्योंकि पंच मेरु पढ़ने पर वो छंद बिल्कुल चौपट हो जाता है। और जो संपादक लोग रहते हैं वो कहीं कहीं क्या करते हैं कि कभी कोई शब्द उनको उनकी समझ में नहीं आता तो फिर वो सुधार देते हैं। ऐसे कई स्थानों पर स्खलन हुए हैं संपादन में। जैसे उदाहरण के लिए एक पाठ आता है ना, सोलह कारण पूजा में आता है एक दोहा, पाप पुण्य सब नाश के, ऐसा पढ़ते ना, वहां पुण्य शब्द गलत है, पाप पुंज सब नाश के, पुंज शब्द है उसकी मूल। आप अपभ्रंश पूजा देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि वहां पर पुंज ही होना चाहिए, पाप पुण्य नहीं है। पाप पुंज सब नाश के, ऐसा पाठ है। तो ऐसा कई स्थानों पर हो जाता है। हाँ, उदक चंदन आप कैसा पढ़ते हैं? तंडुल पढ़ते हैं ना। हाँ, वो तो बतला चुके हैं, वैसे चौमा से बताया था ना। हाँ, तंदुल ल तो ठीक है, द नहीं चाहिए, तंदुल नहीं होना चाहिए, तंडुल होना चाहिए। और त को ट नहीं बोल देना उसके साथ साथ, नहीं तो तंडुल बना दो। तंदुल में से सिर्फ द को ड करना है, त को ट नहीं करना, तंडुल नहीं, तंडुल ऐसा पाठ है। तो पुद्गल पंच वरन रस गंध दू, फरस वसु जाके हैं, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी, चेतनता बिन सो अजीव है। अजीव कौन है? अजीव सो है, माने वो है जो चेतनता रहित है, जिसमें चेतना नहीं है, वो अजीव है। और ताके भेद पंच हैं, उसके पांच भेद हैं। अजीव द्रव्य के पांच भेद कौन से हैं? तो नीचे ले पुद्गल, अब पुद्गल की पहचान बतला रहे हैं साथ में। पंच वर्ण, पुद्गल के पास पांच रंग होते हैं। और रस, रस भी पांच होते हैं। और गंध दू, दो गंध होते हैं। और फरस वसु, फरस यानी स्पर्श, आठ प्रकार के स्पर्श होते हैं। तो ये पुद्गल द्रव्य की पहचान होगी। स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलाः, तो पांच रंग होते हैं। कौन से पांच रंग होते हैं? लिखना है? लिख लो। हरित वर्ण, रक्त वर्ण, पांच वर्ण बदला रहे पुद्गल के, हरित वर्ण, रक्त वर्ण, कृष्ण वर्ण, पीत वर्ण और श्वेत वर्ण। अब इनके कॉम्बिनेशन से दुनिया के सारे कलर्स बन सकते हैं। इनके अलग अलग अनुपात में मिला दो इनको, तो सारे रंग बन सकते हैं। जैसे उदाहरण बताया हूं आपको, हरित वर्ण में लाल वर्ण मिला दो तो एक अलग सा कलर बन जाएगा। इसमें हरित लिखा हुआ है क्योंकि नीले के बारे में जानकारी यह है कि नीले में पीला मिला हो तो हरा हो जाता है, पर इनके कॉम्बिनेशंस देखे जा सकते। काले में सफेद मिलाओ तो ग्रे कलर बन जाएगा। ठीक है, ये पांच वर्ण है, लिख लिया ना, हरित वर्ण, रक्त वर्ण, कृष्ण वर्ण, पीत वर्ण और श्वेत वर्ण। फिर पांच रस होते हैं, यानी पांच प्रकार के रस यानी स्वाद। कौन से पांच प्रकार के स्वाद हैं? एक खट्टा, खट्टा मीठा साथ में मत बोलो, खट्टा अलग है, मीठा अलग है। फिर चरपरा, चरपरा, चरपरा यानी मिर्च मसालों का जो स्वाद होता है, तीखा बोलते हैं गुजराती में, गुजराती में तीखा बोलते हैं। फिर कड़वा, कड़वा जैसे करेला है, कशायला, कशायला है ना, आंवला है, हरड़ है, कशायला स्वाद होता है। तो ऐसे पांच प्रकार के रस हो गए, ये पुद्गल के गुण है। और जीव तो सिर्फ जिह्वा इंद्रिय के माध्यम से उसका स्वाद जानता है, लेकिन क्या होता है कि खाते समय इतना तन्मय भाव आ जाता है राग के कारण, तो उस राग के कारण एकदम ऐसा लगता है कि ये जो मिठाइयां हैं या फिर ये जो नमकीन है उसको खा करके मैंने बिल्कुल अपने आत्मसात कर लिया, आज तो आनंद आ गया। इस प्रकार वो एकत्व, वो जो बुद्धि है उसकी शरीर और देह में एकत्व बुद्धि है ना, शरीर और आत्मा में, तो देह जीव को एक गिने, उस एक गिनती के कारण वो जो चीज खाता है वो सोचता है कि अब वो मुझ में लीन हो गई, जबकि लीन वीन कुछ नहीं हुई, अभी ऑपरेशन करके निकाल सकते हो, थोड़ा सा उसके आकार प्रकार में परिवर्तन आ चुका होगा, लेकिन वो चीज जो है अभी अलग रहती है, जीव से थोड़ी मिक्स होती है कोई चीज। जीव सिर्फ उसके स्वाद का ज्ञान करता है, और ज्ञान करते समय राग के कारण जो स्वाद उसको इष्ट होता है, राग ही फैसला करता है इष्ट और अनिष्ट का। जो राग को प्रिय नहीं है वो उसको अनिष्ट है, जो राग को अच्छा लगता है वो उसको इष्ट है। तो राग के कारण उसको लगता है कि मुझे अपनी इष्ट वस्तु प्राप्त हुई, ज्ञान जानता है कि प्राप्त हुई है, और राग उसमें इष्ट बुद्धि करता है, फिर हर्ष भी होता है उसको। बस इसी का नाम कषाय है, और इसी में जीव फंसा हुआ है। अभी लाख समझाओ लेकिन फिर भी खाते समय पूरा भोजन जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक वो सावधान नहीं रह सकता। कर सकता है तत्व चिंतन पूरा भोजन करते समय, अगर कर ले तो बहुत बड़ा महापुरुष माना जाएगा। भोजन करते करते बीच में कहीं कहीं ना कहीं वो लीन हो जाता है उसके स्वाद में, माने उस समय फिर उसको ये विवेक, मतलब ये ध्यान में नहीं रहता। विवेक ठीक है, एक श्रद्धा में तो ठीक है, एक बात बैठी है कि जीव और शरीर अलग है, ये पुद्गल द्रव्य है और इसके ये स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण है। भोजन के बारे में आप देख लो, ये मिर्च है तो मिर्च में आप समझ जाएंगे कि इसमें पांच प्रकार के रसों में से कौन सा रस है, चरपरा। तो फिर उसको स्वाद लेते समय आप जान भी लेंगे, स्वाद जिह्वा इंद्रिय के द्वारा आप जान भी लेंगे कि हाँ ये स्वाद है, लेकिन फिर भी जब खाते समय वो जो अपने एक राग उत्पन्न होता है उस राग के समय ये सब स्वाध्याय एक तरफ रह जाता है, और उस समय तो आहा बस वो याद रहता है। ये स्थिति हो जाती। सरस बनावेलू छे आज तो। ये सब स्थितियां आती है कड़वा कशाला। फिर गंध दो प्रकार के होते हैं, सुगंध और दुर्गंध। फिर स्पर्श आठ प्रकार के हैं, शीत उष्ण लघु गुरु, लघु का अर्थ हल्का, गुरु यानी भारी, कोमल कठोर यानी कोमल को मृदु कहते हैं, मृदु और कर्कश, कर्कश यानी कठोर, कोमल कठोर। फिर रूखा और चिकना, यहां पर चिकना गुजराती वाला चिकना नहीं लेना, गुजराती में चिकना का मतलब चिपचिपा, जो चिपक जाए, लेकिन यहां चिकना का अर्थ क्या है, स्मूथ, लिस्सा जिसको बोलते हैं गुजराती में, उसको यहां पर चिकना कहा गया। तो ऐसे आठ प्रकार के स्पर्श होते हैं। ये चीजें जिसमें पाई जाए समझ लेना कि वो जीव द्रव्य नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य और अजीव है, ठीक है ना। तो इसलिए जितने एड होते हैं टेलीविजन पर आने वाले वो सब पुद्गल द्रव्य की महिमा को प्रकट करने वाले होते हैं, उसमें जीव की कहीं भी महिमा नहीं आती। फिर इसके बाद आकाश और काल द्रव्यों का वर्णन अगले काव्य में किया गया है। तो आज अपन इतना याद रखो, इसको धर्म और अधर्म द्रव्य की भी चर्चा है आगे की दो लाइनों में, लेकिन पुद्गल के ये जो गुण हैं इनको आप कंटेस्ट कर लो, ठीक है ना। कितने गुण हो गए कुल मिलाकर के, पांच पांच दो और आठ, 20 हो गए। और फिर 20 के अलावा एक पर्याय होती है पुद्गल की, ये तो गुण हो गए, और पुद्गल की एक पर्याय होती है, उसका नाम है शब्द, ध्वनि। ध्वनि जो है पुद्गल का गुण नहीं है, एक पर्याय है पुद्गल की, उसके सात भेद होते हैं, सा रे ग म प ध नि, और फिर उसमें शुद्ध और कोमल स्वर के भेद से और भेद प्रभेद बन जाते हैं, तो 12 प्रकार के स्वर बन जाते हैं। तो ऐसे स्थूल रूप से 7 स्वर होते हैं, तो ऐसे गिनेंगे अपन पुद्गल के भेद प्रभेद, उनके गुण आदि, तो फिर कितने हो जाएंगे? ये 20 तो उनके मूल गुण हो गए, और फिर 7 स्वर और मिला दो तो 27 हो जाएंगे, और 27 जो है ये 5 इंद्रियों के विषय हो गए। रसना इंद्री के 5 विषय हो गए, घ्राण के 2, स्पर्श के 8, और चक्षु के कितने रंग होते हैं बताए? अभी बताए थे ना, 5, और फिर कर्ण के 7 स्वर होते हैं। सारे गम पधनी, उनको अगर व्यवस्थित क्रम से बोला जाए सारे गम पधनी को तो फिर संगीत कहलाता है, और अव्यवस्थित बोला जाए, चिल्ला चोट मचाई जाए तो फिर चिल्ल पों करोगे तो फिर वो नॉइज कहलाता है, म्यूजिक नहीं, शोर कहते हैं उसको। एक संगीत है और दूसरा शोर है। तो पुद्गल द्रव्य के 20 गुण है, कौन बता सकता है? हाँ बोलिए। 8 स्पर्श कौन से? चीखना और खुरदर रुक्ष, ठीक है, 8 स्पर्श हो गए, और 5 रूप वर्ण, ठीक है, कौन से? ठीक है, पांच रस, रसना नहीं, रस, और किसी ने याद किया? हाँ ये कर्ण इंद्रिय के तो ठीक है, 7 स्वर है, उसकी अभी चर्चा यहाँ नहीं की थी, यहाँ तो गुणों की बात हो रही। तो पुद्गल में ये पाए जाते हैं 20 गुण। अब इसमें एक बात ख्याल में रखने की है कि 8 स्पर्श जो होते हैं वो पूरे के पूरे परमाणु में नहीं होते, स्कंध में होते हैं, ये ध्यान में रखने का। परमाणु में 2 स्पर्श होंगे, शीत उष्ण में से 1 और स्निग्ध रूक्ष में से 1। हल्का भारी और कोमल कठोर जो होता है ना, ये स्कंद की दशा में ही स्पर्श होता है, परमाणु में नहीं होता। तो इस प्रकार पुद्गल द्रव्य की पहचान हो गई। अभी पहले जीव द्रव्य की पहचान बतला दी थी, उपयोगो लक्षणम, फिर अब पुद्गल द्रव्य की पहचान बताई कि जिसमें स्पर्श हो, रस हो, गंध हो और वर्ण हो, उसको पुद्गल द्रव्य कहते हैं, और इसी को रूपी द्रव्य भी कहते हैं, रूपिण पुद्गलाह। रूपी कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। अब इसके आगे लिखा है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य कैसा होता है? तो अनरूपी, अनरूपी यानी अरूपी होता है। धर्म द्रव्य में ये रूप रंग आदि नहीं होते, और कैसा होता है? जीव पुद्गल को, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, इन दो को चलन सहाय, चलने में सहायक होता है। देखो चलने फिरने वाले द्रव्य कौन से हैं? 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्य जो है वो हिलते डुलते नहीं है, याद रखने की बात है। 6 में से जो 4 द्रव्य होते हैं वो हमेशा एक जगह रहते हैं, जैसे आकाश द्रव्य, आकाश कभी हिलता डुलता नहीं है। धर्म अधर्म द्रव्य है, ये भी कभी हिलते डुलते नहीं है, और इसी प्रकार काल द्रव्य है, तो काल द्रव्य भी जो है वो भी कभी स्थानांतरित नहीं होता। फिर बचे कौन से द्रव्य? जीव द्रव्य और अजीव नहीं है, पुद्गल द्रव्य। पीछे भगवान है, तो जीव और पुद्गल द्रव्य, अजीव द्रव्य की तो 5 भेद थे, तो पुद्गल और जीव द्रव्य जो है ये चलने फिरने वाले द्रव्य हैं, इनमें हलचली रहती है। तो इनमें जो चलन सहाय, इनके चलने फिरने में हिलने डुलने में जो सहायक है वो कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य। इसकी चर्चा अपन ने पहली ढाल में की थी, पुद्गल नव धर्म अधर्म का दूसरी ढाल में की थी, इनते न्यारी है जीव चाल। तिष्ठत होय अधर्म सहाई, तिष्ठत का अर्थ होता है ठहरने में, ठहरने में, अत्र तिष्ठ बोलते ना, तिष्ठ का अर्थ बैठना नहीं है, वहां बाहर चौके के थोड़ी बैठा लोगे, वहां पर अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ मतलब यहां ठहरी है, यहां ठहरी है। तो तिष्ठत होय अधर्म सहाई, ठहरने में अधर्म द्रव्य सहायक होता है। और जिन जिनेन्द्र भगवान ने इन दोनों को, अधर्म द्रव्य को भी बिन मूर्ति निरूपी, बिन मूर्ति यानी देखो मूर्तिक और रूपी एक अर्थवाची है, मूर्तिक कह लो या रूपी कह लो एक अर्थवाची है। एक अर्थवाची का अर्थ क्या है, एक ही अर्थ है दोनों के। तो बिन मूर्ति का अर्थ हो गया ऊपर कहा है अरूपी, और यहां बिन मूर्ति का, दोनों का अर्थ एक ही होता है कि धर्म द्रव्य भी अरूपी है और अधर्म द्रव्य भी अरूपी है, और दोनों ही दूसरे शब्दों में कहोगे कि दोनों ही अमूर्तिक है, ठीक है। और मूर्तिक कौन है, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। और मूर्तिक क्यों कहा उसको, रूपी क्यों कहा पुद्गल द्रव्य को, क्योंकि उसके पास रूप रस गंध स्पर्श ये गुण पाए जाते हैं, इसलिए। अब इसके आगे दो द्रव्य और बाकी रह गए, ये चार द्रव्य हो गए ना, कौन से चार हो गए, जीव पुद्गल धर्म और अधर्म। अब दो कौन से बचे, आकाश और काल, तो वो बतलाते हैं। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो नियत वर्तना निषदिन सोव्यव, हार काल परिमानु